नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एनडीटीवी के अधिग्रहण के लिए अडानी ग्रुप के ओपन ऑफर के बीच प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से इस्तीफा दे दिया। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप व्हीकल है। इस दौरान चर्चा ये भी है कि रॉय परिवार अडानी को रोकने के लिए एक काउंटर ऑफर शुरू कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए रॉय परिवार को महत्वपूर्ण वित्तीय ताकत की आवश्यकता थी। एनडीटीवी ने मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लिखी गई चिट्ठी में बताया कि एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया कि 29 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में तय किया गया कि सुदीप्ता भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेंथल चेंगल वारायण तत्काल प्रभाव से आरआरपीआरएच के बोर्ड में नए निदेशक होंगे और डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआरएच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। आरबीआई ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट से हासिल फीडबैक से सीखकर आरबीआई रिटेल डिजिटल रुपी में बदलाव करेगा और उसे पूरे देश में लॉन्च करेगा। फिलहाल डिजिटल रुपी को देश के कुछ ही हिस्सों में लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही डिजिटल रुपी के लिए कुछ चुनिंदा बैंक ही माने हैं। रिटेल ई रूपी का पायलट प्रोजेक्ट देश के 4 बड़े शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च होगा। आरबीआई की योजना के मुताबिक भविष्य में प्रोजेक्ट को विस्तार देते हुए इसे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, शिमला और पटना में भी लॉन्च किया जा सकता है। सरकार की तरफ से नियुक्त गैस कीमत समीक्षा समिति ने बुधवार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में परंपरागत गैस क्षेत्रों के लिए एक आधार एवं अधिकतम कीमत तय करने का सुझाव देने के साथ ही जनवरी 2026 से मूल्य निर्धारण की खुली छूट देने की सिफारिश की। योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख की अगुवाई वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि परंपरागत क्षेत्रों से निकलने वाली गैस के लिए एक निर्धारित मूल्य दायरा रखने से गैस उत्पादकों के लिए एक अनुमान योग्य कीमत निर्धारण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। समिति के मुताबिक इस व्यवस्था से सीएनजी एवं पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस पीएनबी की कीमतों को नरम करने में भी मदद मिलेगी। उत्पादन लागत बढ़ने से इसकी कीमत पिछले साल से अब तक 70% बढ़ चुकी है। टोयोटा किलोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष विक्रम एस किलोस्कर का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। टोयोटा किलोस्कर मोटर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विक्रम एस किलोस्कर का अंतिम संस्कार बेंगलुरु के हेबल शमशान घाट में बुधवार को किया गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली निजी संयुक्त उद्यमों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री को फिलहाल टाल दिया। सार्वजनिक स्वामित्व वाले AAI की इन 4 प्रमुख हवाई अड्डों में बाकी की हिस्सेदारी राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के तहत बेची जानी थी। इस योजना की घोषणा पिछले वर्ष अगस्त में की गई थी। NMP के जरिए वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों के माध्यम से 6,00,000 करोड़ रुपए की कुल मौद्रीकरण क्षमता होने का अनुमान है। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का परिचालन करने वाले संयुक्त उपक्रमों में AAI की 26% हिस्सेदारी है। वहीं हैदराबाद तथा बेंगलुरु हवाई अड्डों का परिचालन करने वाले संयुक्त उपक्रमों में उसकी हिस्सेदारी 13% है। सैमसंग इंडिया देश भर में अपने R&D संस्थानों के लिए 1000 इंजीनियरों की नियुक्ति की योजना बना रही है। इन इंजीनियरों की नियुक्ति IIT और अन्य शीर्ष संस्थानों से की जाएगी। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। ये युवा इंजीनियर कंपनी के साथ 2023 में जुड़ेंगे और उसके बेंगलुरु, नोएडा, दिल्ली के R&D संस्थानों तथा बेंगलुरु में सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर काम करेंगे। चालू वित्त वर्ष के दूसरी तिमाही के लिए GDP की वृद्धि दर के आंकड़े आज शाम जारी किए जाएंगे। NSO की ओर से जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों के प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। रेटिंग एजेंसी इकरा का अनुमान है कि दूसरी तिमाही में GDP की वृद्धि दर 6.5% रहेगी। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में वृद्धि दर 5.8% रहने का अनुमान लगाया। पिछले वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में GDP की वृद्धि दर 8.4% रही थी। इससे पहले इसी महीने भारतीय रिजर्व बैंक के लेख में दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 6.1 से 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया। विस्तार एयर इंडिया के प्रस्तावित विलय सौदे का सिंगापुर एयरलाइन ग्रुप पर वित्तीय बोझ न्यूनतम रहेगा। सिंगापुर एयरलाइन विस्तारित एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी हासिल करने जा रही है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को ये जानकारी दी। SIA ने लगभग 50 साल पहले भारत में सेवाएं शुरू की थीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फेरेल ने बुधवार को एक बयान में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा कदम है जिससे 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। बयान में कहा गया कि अल्बनीज सरकार इस पुष्टि का स्वागत करती है कि भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के क्रियान्वयन के लिए अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर लिया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।